ओम शांति। मधुबन घर में आप सभी कर्नाटक निवासी सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर बहने और सभी ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हम सभी बाबा के चुने हुए रतन हैं। बाबा ने हम सबको भिन्न भिन्न स्थानों से चुना है। उन्हीं कलप पहले वाली आत्माओं को, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, सत्युग में आने वाली हैं, हम सभी वो आत्माएं, बाबा के वो बच्चे हैं जिनको बाबा ने आप सबको यहाँ चुन करके मधुबन घर में लाया है। आप सभी एक साल के बाद यहाँ पधारे हैं। विशेषतया एक साल तो हम सभी ने भटकियां की, तपस्या की है कोरोना महाकाल में। और अब इस समय के प्रमाण, समय अंतिम समय आप सबको दिखाई दे रहा है, अंतिम समय दिखाई दे रहा है ना कि कैसा समय आया। अभी परसों का जो वरदान था, कल का वरदान ही था, आश्चर्यजनक दृश्य हमारे सामने आएंगे, तो उसको फेस करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। हम सबको, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम कभी किसी स्थिति में घबराए नहीं। अगर हमें, हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे, अभी तीन तरह के बच्चे हैं बाबा के, एक हैं सुनने और सुनाने वाले, मुरली सुनते हैं और सुनाते हैं और वर्णन भी कर देते हैं, है ना, वर्णन करते, क्लास भी करा देते हैं, सुनना सुनाना वर्णन करना और क्लास भी करा देते हैं, ठीक है। पहले बच्चे तो ये है, दूसरे बच्चे हैं सुनने वाले और फिर समा करके फिर सुनाने वाले, सुन करके समा करके मतलब धारण करके फिर सुनाने वाले, राइट। और तीसरे बच्चे हैं स्वरूप बनने वाले, सुन करके स्वरूप बन जाते हैं और भले सुनाए ना सुनाए फर्क नहीं पड़ता है, किंतु वो स्वरूप बन जाते हैं, वो सारे विश्व की सेवा करते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बाबा के तीन तरह के बच्चे हैं, आपने सुना होगा, महारथी, घोड़ेस्वार और तीसरे कौन से होते हैं, प्यादे, है ना। तो महारथी कौन, जो सुन करके और समा लेते हैं और अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, बाबा की एक एक बात को, बाबा के एक एक महावाक्य को, बाबा से एक एक संबंध को, बाबा के ज्ञान के एक एक बिंदु को, ज्ञान के एक एक पॉइंट को, हर गुण को, हर शक्ति को, उसको क्या करते हैं, उसको सच्चे दिल से महसूस करके अनुभव में लाते हैं। क्योंकि एक बात आपको बड़ी सबको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर हम सच्चे दिल की महसूसता के बिना अनुभव नहीं कर सकते। अगर सपोज आप अगर कोई चीज खाते भी हैं और आपकी बुद्धि कहीं और हो और वह चीज खा रहे हैं, किसी और चीज में आपका दिल लगा हो और आप खा रहे हो, तो आपको आपका अनुभव होगा उसको, आपका उसका टेस्ट का भी आपको अनुभव होगा। सपोज आपके दिमाग कहीं और लगा हुआ है और आपको कुछ चीज खाने की दी जाए, तो आपका उसका टेस्ट अनुभव होगा क्या? क्योंकि जब आपका दिल से उसको खाएंगे ना, तो उसका आपको महसूस होगा, रियलाइज होगा, और तब रियलाइज होने के बाद अनुभव होगा। तो बिना सच्चे दिल की महसूसता के बिना अनुभव नहीं हो सकता है, सच्ची दिल की महसूसता से ही अनुभव होता है। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के, हम जब निरंतर अनुभव करते जाते हैं तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। आपने सुना भी होगा, एक कहावत आप सबने सुनी होगी, जहां ना पहुंचे रवि रवि माने सूरज, जहां सूरज की धूप नहीं पहुंच सकती है वहां पर कौन पहुंच सकता है? वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। हम बाबा के बच्चे, हम तो दुनिया में सब लोग क्या है, सब लोग वो भी अनुभव की अथॉरिटी है। हम लोग भी पहले अनुभव की, रावण के अनुभव की अथॉरिटी थे। हम सबको अनुभव है ना, देह भान का अनुभव है, देह के संबंध संपर्क का बंधन का अनुभव है, देह के पदार्थों के बंधन का अनुभव है, और देह के स्वभाव संस्कार के बंधन का अनुभव हम सबको है। उसके हम अथॉरिटी थे ना? थे नहीं थे? अभी भी भुलाने से बड़ा मुश्किल से भूलता है ना, देवान भूलता है क्या? हम देवान के अनुभव की अथॉरिटी है कि नहीं है? है ना, सभी हैं। और देह के संबंध संपर्क के अनुभव की अथॉरिटी भी है, देह के पदार्थों के अनुभव की अथॉरिटी भी है, और देह के स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अनुभव की अथॉरिटी भी हमारे पास है, और देह के संस्कार आलस्य के अनुभव की अथॉरिटी है कि नहीं है? है ना, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदला लेने की भावना, शक अनुमान चिंता की अथॉरिटी है कि नहीं? डर की अथॉरिटी है, भय की अथॉरिटी भी बने थे ना हम लोग, और जल्दीबाजी प्रेशर्स में रहना, ईर्ष्या द्वेष करना, तो ये हम इसकी अथॉरिटी तो पहले थे। अब जो बाबा ने हमें नया ज्ञान दिया है, नई जो हमें समझ दी है, नई समझ, ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना समझ, किस चीज की समझ? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। हमें सत्य समझ आ गया है। अब इसके 7 स्टेप्स हैं, अगर हमको अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो इसके 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप में हम चलेंगे तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। हम अवगुणों की अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने थे? वो भी 7 स्टेप में ही बने थे, है ना। अभी भी हमको अगर सत्य के अनुभव की अथॉरिटी बनना है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो बाबा ने हमको समझ दी है, जो बाबा ने हमको ड्रामा के आदि मध्यंत की समझ दी है, स्वदर्शन चक्र की समझ हमको दी है ना, तो सारे अगर हमें एक एक संबंध की अनुभूति हमें करनी है, उसकी अथॉरिटी बनना है, तो हमको अभी उसी 7 स्टेप से जाना पड़ेगा। तो आज हम इसी बात को गहराई से डिस्कस समझेंगे कि कैसे हम बच्चे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक है, उसमें हम सबको अकेले ही फेस करना होगा। जैसे अभी कोरोना महाकाल में देखा, कोरोना की काल में आपने देखा कि किसी कोरोना हुआ तो कितने रिलेटिव अलाउड थे साथ में, कितने संबंधी अलाउड थे, एक पेशेंट के साथ? एक तो अलाउड था, नहीं था एक अलाउड था, नहीं था ना, एक भी अलाउड नहीं था ना। डॉक्टर भी पास नहीं आते थे, है ना, नर्स भी बड़ी दूर से, खाना भी बाहर रख के दवाई भी बाहर रख के चले जाते थे, आप अपने आप उठ के ले लो, है ना। सीरियस पेशेंट को देखने के लिए हम स्पेशल तरह की पीपीई किट पहन करके हम लोग पेशेंट के बजाते थे, है ना, मास्क लगा के और पूरी किट पहन के, सिर पे कैप लगा के, हाथों में ग्लव्स पहन के, डबल मास्क लगा के जाते थे। डॉक्टर्स भी पेशेंट के जाने से डरते थे, नर्सेज भी जाने से डरते थे, है ना। तो आने वाला जो महाकाल है, अभी आने वाला जो समय है, उसमें हम सबको अकेले को फेस करना है। जो भी होगा, चाहे हमारे साथ, चाहे शरीर में कर्म भोग आएंगे, चाहे परिस्थितियां आएंगी, चाहे प्रकृति के 5 तत्व अटैक करेंगे, या कोई बीमारियां आएंगी, हर एक को अपने आप अकेले फेस करना है। ना आपके संबंधी काम आएंगे, ना साथी काम आएंगे, ना पैसा काम आएगा, ना स्टेटस काम आएगा, ठीक है, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ आप, हमारा पुण्य का खाता, या हमने अब तक जो भी कमाई की है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, वही हमारे काम आने वाला है। अब समय बिल्कुल सामने आ चुका है। अभी हमने एक साल जो देखा है, और आने वाली समस्याएं जो आप देख रहे हैं समाज में, दिन प्रतिदिन जो भी न्यूज सुनते हैं आप, आपको अवेयरनेस तो मिलती है ना, भले आप न्यूज ना सुनो, फिर भी समाज में आपको पता तो लग ही जाता है समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अब आने वाला समय इतना भयानक होगा, बाबा ने कहा है कि आप उसके बारे सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या होने वाला है, जो आपके स्वप्न में भी नहीं हो, ख्याल में भी नहीं होगा, वो सब होने वाला है। तो इसलिए अब समय है, हमको अचानक बहुत काल और एवरेडी, एवरेडी माना संपन्न और संपूर्ण, बहुत काल का अभ्यास हमें चाहिए संपन्न और संपूर्ण बनने का। तब हम संपन्न और संपूर्ण होंगे तो अचानक के पेपर में पास होंगे, है ना। तो अचानक का पेपर कभी भी आएगा और उसका समय सिर्फ एक ही सेकंड होगा, 3 घंटा नहीं होगा, आधा घंटा नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं होगा, सिर्फ 1 सेकंड होगा, है ना। तो पेपर का क्वेश्चन भी हमको पता है, किंतु हमको तैयारी ऐसी करनी है और इसकी रोज रोज रिहर्सल करनी है। जैसे हम हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, अचानक जब इमरजेंसीज आती हैं उसके लिए हम डॉक्टर्स, पूरी डॉक्टर्स की टीम, हम मॉक ड्रिल करते हैं। पेशेंट नहीं आए होते उस समय, हम लोग एक 3-4 पीछे से क्या बोलते हैं वो एम्बुलेंस, एक के पीछे एक आती है, उसमें आर्टिफिशियल पेशेंट्स होते हैं, मतलब बीमार नहीं होते वो, तो हम उनको, और डॉक्टर्स की टीम होती है, एक के बाद एक एम्बुलेंस आती है और पेशेंट को लेकर के जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना, ट्रायज करना, दूसरे वार्ड में भेजना, सब कुछ करना, वो ड्रिल करते हैं, है ना। ऐसे आर्मी भी ड्रिल करती है, नेवी भी ड्रिल करती है, एयरफोर्स भी ड्रिल करती है। तो हम ब्राह्मण, हम रूहानी सेनानी हैं, तो हम भी रूहानी बाबा की सेना के कमांडर्स हैं, और हमको भी ना खुद टीचर बहनों को, खुद तो वो ड्रिल करनी ही है, किंतु अपने स्टूडेंट्स को भी वो ड्रिल करानी है कि अचानक की ड्रिल, है ना, हम सबको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अचानक से शरीर से न्यारा होना, अचानक ऐसी महामारी आने पर अपने आप को कैसे बचाना, कैसे अपने सुरक्षा कवच को, अपने आभा मंडल को इतना स्ट्रांग बना देना, और डायरेक्ट एक लाइन, हॉटलाइन, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ, परमधाम में शिव बाबा के साथ स्थापित कर लेना, कैचिंग पावर और टचिंग पावर के आधार पर जीवन को आगे चलाना, कहीं और से हमें पालना ना मिले किंतु सूक्ष्म वतन और परमधाम से हमें पालना मिले। तो इसके लिए आज हम उसी बात को थोड़ा गहराई समझ लेते हैं कि आने वाला समय की हम तैयारी कैसे करें, अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने। तो जैसे मैं बात कर रहा था, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला स्टेप जो है, क्योंकि योग, राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है, योग या मेडिटेशन, योग का मतलब है कनेक्शन। कनेक्शन किस चीज से, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना। सत्य क्या है, सत्य की दो परिभाषा है या दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहला है सत्य एटर्नल होता है, सत्य एटर्नल मीन्स बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ होता है, सत्य का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, सदा ही होता है, अविनाशी होता है। पहली क्वालिटी ये है। दूसरी क्वालिटी, वो अनचेंजेबल होता है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो परमात्मा ने आकर के, परम सत्य परमात्मा ने आकर के हमको 4 सत्य बताए, और उन 4 सत्यों में रमण करना ही राजयोग है, राजयोग मेडिटेशन है। और उस जो सत्य हैं उनको हमें पहले तो बहुत गहराई से समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ को बहुत अच्छे से जान लेना गहराई से। और दूसरी बात जो है, तो हमने 4 सत्य कौन कौन से हैं, पहला सत्य है मैं आत्मा हूं, मैं एक स्थूल देह, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मैं जो आत्मा हूं वो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, जिस 7 एनर्जी से, 7 आत्मिक ऊर्जाओं से मैं आत्मा अपनी बुद्धि, 3 सूक्ष्म शक्तियों, बुद्धि मन संस्कार को चलाती हूं, और मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को चलाती हूं, 5 कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान मुख, और त्वचा, पूरी स्किन, सारी बॉडी पे जो स्किन है, और एक बाहर स्किन, एक अंदर भी स्किन है, मुंह के अंदर, सांस की नाली के अंदर, पेट की नाली के अंदर, और खून की नालियों के अंदर, वो पूरी अंदर की एक स्किन है जो सेंस करती है, रिसेप्टर है, वो रिसीव करती है, सेंस करती है, और शरीर की 8 अंगों को चलाती है। तो मैं ये चलते फिरते हमको ये अवेयरनेस लेनी चाहिए। तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, दूसरा स्टेप है अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, अवेयरनेस। तो पहला हमें जानना है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं, ये मैटर है, और दूसरा जो सत्य है मैं परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा कौन है? वो सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, सागर है, ओशियन है, और उसकी मैं संतान हूं। तीसरा जो ट्रुथ है वो संबंध, संबंध अर्थात सी, ए बी सी डी में कहता हूं, आत्मा बाबा कनेक्शन संबंध, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% पार्ट एक्यूरेट प्ले किया है, अभी कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, दे रहे हैं और भविष्य में देते रहेंगे। तो ये चार सत्य बहुत सहज है कहना, एबीसीडी कहना बहुत सहज है, किंतु इसकी बहुत ही गहराई है, इसकी बहुत डेप्थ है। एक एक बात को अगर हम समझ जाएं गहराई से और फिर अवेयरनेस, हमको अवेयरनेस 24 घंटा एक अवेयरनेस क्या रहती है, हमको 24 घंटा अवेयरनेस अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी, 30-40 साल ज्ञान में चलने के बाद भी, दूसरों को सिखाने के बाद भी, हम लोगों को एक अवेयरनेस रहती है। क्या अवेयरनेस रहती है? देह भान की अवेयरनेस खत्म नहीं हुई है, हमको टोटली इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मनन सारा दिन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज, अपने आप को बार बार रिवाइज करते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, इवन ब्रश करते, कुछ भी कर्म करें, खाना खाते, कुछ भी कर्म करते, ये बहुत ही एफर्ट वाली बात है, इसी में मेहनत समाई हुई है। तो बार बार मनन, चिंतन मन, मुझे बनना है ऐसा, चलते फिरते मैं ऐसे महसूस करूं कि मैं आत्मा आंख से देख रही हूं, प्रैक्टिकली मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा कानों सुन रही हूं, कहना आसान है किंतु इसको कंटिन्यूस अवेयरनेस में रहना। तो मनन, चिंतन, मंथन, चिंतन माना मुझे ऐसा बनना है, जो बाबा की मुरली है ना, बाबा की मुरली की, जैसे आज हमने पवित्रता की शक्ति के ऊपर मुरली सुनी, तो ये पवित्रता की शक्ति जो है मुझे ऐसा बनना है। आज बाबा ने जो जो पवित्रता की बातें कही, ब्राह्मण जी का श्वास है, क्या है पवित्रता ना, कैसी परिभाषा, कितनी गुह्य है परिभाषा बाबा पवित्रता की, क्या क्या इससे प्राप्तियां हैं, वो बहुत गहराई से अपने आप को चिंतन में लानी है, मतलब मुझे इसको अडॉप्ट करना है, मुझे ऐसा बनना है, ये अंदर से चिंता नहीं चिंतन लेके आना है। और फिर मंथन माना कैसे बनना है, मैं कैसे ये चीज मेरे जीवन में आ जाए। और फिर सिमरन, सिमरन माना कार्य करते हुए इसको कार्य में लगाना। तो ये अवेयरनेस की कंटिन्यूस चाहिए, क्योंकि हमको कंटिन्यूस अवेयरनेस, लगातार अवेयरनेस हमको किस चीज की रहती है, या तो हमको रहती है 99% तो हमको अवेयरनेस क्या, देह भान की रहती है, देखे संबंध संपर्क की रहती है, देखे पदार्थों की रहती है, देखे स्वभाव संस्कार की रहती है, कभी हम खाना नहीं भूलते हैं, कभी हम पानी पीना नहीं भूलते हैं, कितना भी बिजी हो कभी सांस लेना नहीं भूलते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं। थोड़ी देर में एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ी देर में हम सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हमारी कॉन्शियसनेस बदल जाती है। तो ये अवेयरनेस। फिर जो है थर्ड स्टेप जो है वो है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सच्ची दिल से महसूस करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने जो एफर्ट, हमने मधुबन में हमने एक ग्रुप बना के एफर्ट करने शुरू की, जब ये बात हमने समझी कि अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू कर दिया, आंख खुली रियलाइजेशन कोर्स शुरू। रियलाइजेशन कोर्स माना उठते ही महसूस करो कि मैं आत्मा ये यहां हूं, मैं देह से अलग हूं, मैं आत्मा एनर्जी हूं, ये देह अलग है, इतना, और मैं जो आत्मा हूं अजर अवर अविनाशी हूं। महसूस करें मैं लाइट कैसे, मैं आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से ब्रेन की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हूं, ज्ञान की एनर्जी, पवित्रता की एनर्जी, शांति की एनर्जी, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की एनर्जी, अतीन्द्रिय सुख की एनर्जी, आनंद की एनर्जी, और आठों शक्तियों की एक एक एनर्जी अर्थ के साथ, अर्थ सहित समझने की आवश्यकता है। कई बार हम शांति शब्द ऐसे ही बोल देते हैं, प्रेम शब्द ऐसे ही बोल देते हैं, हमें रियल मीनिंग पता नहीं होता है। तो हम रियल मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ उसको समझें, उसको अपने, क्योंकि हमारी ब्रेन के सेल्स में क्या स्टोर है, एक सॉफ्ट कॉपी में हमने जो तेसर जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए वो एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में स्टोर है, और हार्ड कॉपी हमारे ब्रेन में स्टोर है। सो अरब कोशिकाओं में ऐसे केमिकल बने हुए हैं जो जो हमने किए हुए हैं कर्म, काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश, देहभान में आकर के देह के संबंध संपर्कों की स्मृति हमारे अंदर रिकॉर्ड है, देह के पदार्थों की छोटी छोटी बातें स्मृति हमारे रिकॉर्ड है, हमारे ड्राइंग रूम में क्या रखा हुआ है उसकी स्मृति हमारे अंदर रिकॉर्ड है, हमारी तिजोरी में क्या क्या रखा हुआ है उसकी स्मृति रिकॉर्ड है, कोई चीज हमारी कमरे में से थोड़ी चीज भी गायब होती है ना टेबल से, हमें एकदम स्मृति उसकी रहती है, वो रिकॉर्ड है। अभी हमको क्या रिकॉर्डिंग अंदर डालनी है, ये जो सहज बात नहीं है, इस रिकॉर्डिंग को परिवर्तन करना सहज नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत हार्ड एफर्ट करनी पड़ेगी, बिना एफर्ट के हम इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसको इसी 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 परिवर्तन को करना जो हमें है, वो ये जो परिवर्तन हमें करना है, इसके लिए हमको एक प्रोसेस को अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कहते हैं रिवार्ड फिनोमेना, हमारे यहां रिवार्ड फिनोमेना, जैसे हमने क्या देखा हुआ है बचपन से, क्या देखा हुआ हमने कि हमने बार बार देखा, बचपन से देखा हम सबने, जब छोटे थे हम माता पिता के साथ थे, छोटेपन में 5-6 साल की उम्र में देखते थे कि माता पिता बच्चों को, दूसरे भाई बहन को डांट लगाते थे, काम हो जाता था, गुस्सा करते थे, काम हो जाता था, जल्दीबाजी करते काम हो, टीचर हमारे जल्दीबाजी करते थे, काम हो जाता था, डराते थे, काम हो जाता था। तो बार बार रिकॉर्डिंग हमारी सेल्स में हुई हुई है, अब अनुभव की अथॉरिटी हम उसकी बने हुए हैं। तो ज्ञान में आने के बाद भी, क्योंकि हमारे मेरे पास तो हार्ट के पेशेंट्स आते हैं ना, और हमारे कई बीकेस को भी हार्ट की बीमारी होती है, उनकी आर्टरीज भी ब्लॉक हो जाती है, उनको भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो जाती है, तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपको अभी आदत है, और क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर हमारे पास होते हैं, कोई हमको ना भी बताए तो हम उनके साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर उनको दे देते हैं और उनको आंसर करने के लिए कहते हैं, और फिर हमारे पास एक कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं उसको, और उसमें की होती है, उसके अनुसार उसमें कितना गुस्सा है, कितनी चिंता है, कितनी जल्दीबाजी है, कितना उदासी है, कैसा उसके कितनी सेंसिटिव नेचर है, कितनी भावुकता है, कितना उसके अंदर उसका लाइफस्टाइल क्या है, पूरा का पूरा हमारे सामने आ जाता है ना? तो वो परिवर्तन बेसिक बात है, व्यवहार की बात। अगर मेरा व्यवहार नहीं बदलता है, भले मैं बीके हूं, भले मैं 40-50 साल से ज्ञान में हूं, किंतु मेरे व्यवहार में अभी भी जल्दीबाजी है, अभी भी चिंता है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी इरिटेशन है, अभी भी रिजेंटमेंट है, कुछ दबा हुआ गुस्सा अंदर है, सप्रेस्ड एंगर है, तो मेरे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, मेरे अंदर कड़वाहट है, तो मेरी डायबिटीज बढ़ रही है, मेरे अंदर अगर पास्ट का प्रेशर मैंने रिलीज नहीं किया है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, है ना? कब होगा? अब अंतिम समय आ गया है, आने आज की मुरली में भी था, जब कारने डॉक्टर्स के पास लाइन हम जाएंगे, दवाई मिलेगी पर दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होगा, हमारी कड़वाहट इतनी ज्यादा होगी, हमारे अंदर इतना गुस्सा ज्यादा होगा कि दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, खान पान ऐसा मिलेगा नहीं तो दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, दवाइयां फेल हो जाएंगी, दवाई ऑलरेडी फेल हो रही है। कोरोना काल में हमने क्या क्या दवाई नहीं दी कोरोना के मरीजों को, पेट की दर्द, पेट में जो इन्फेक्शन होता है उसकी दवाई भी दी, मलेरिया की दवाई भी दी, कीड़े की दवाई भी दी, आप पता होगा, सुना होगा आपने, हमने हम हर तरह की बैक्टीरिया की दवाई भी दी, सब तरह की वायरस सब फेल हो गए, अभी तक भी कोई कोरोना की दवाई निकली नहीं है, वैक्सीन जरूर निकाली है क्योंकि अभी तक कोरोना की ऐसी दवाई नहीं जिसको कोरोना हो जाए उसकी दवाई दे दें हम ठीक हो जाए पेशेंट, तो दवाइयां फेल होंगी, ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है। तो अभी हमको वो समय है कि हम ये जो 7 गुणों की अथॉरिटी, क्योंकि 7 गुण चाहिए हमारे शरीर के हर सेल को, ये 7 गुण से हमारे सेल्स बनी हैं, वो कार्य करती हैं, और 7 गुण अगर मेरे व्यवहार में नहीं आए, उसके अनुभव की हम अथॉरिटी नहीं बने, तो हम अंत में ये दवाइयां हम छोड़ नहीं पाएंगे। दवाई हमको अभी छोड़नी है, कब छोड़नी है? विनाश आने के बाद, उसमें दवाई मिलेंगी नहीं। आपका थायराइड खराब है, उसमें आप रोज थायराइड की 100 माइक्रोग्राम गोली खाते हैं सुबह 5 बजे, गोली मिलेगी नहीं, कैसे चलोगे? फिर कैसे चलोगे? ब्लड प्रेशर है कैसे चलोगे? डायबिटीज है कैसे चलोगे? रोज हार्ट की दवाई खाते तो चलते हो, नहीं कैसे चलोगे फिर बाद में? अभी छोड़नी पड़ेगी। इतनी अंदर शांति प्यार खुशी की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, बाप से एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन में जाने की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, बाप दादा की गोद का अनुभव करने की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। जब जब इस दुनिया में कुछ होगा हम सूक्ष्म वतन में उड़ जाएं सेकंड में, उसकी अथॉरिटी बनना पड़ेगा। उसके बगैर हमको, और वह अभी बनना पड़ेगा, दैवी गुण भी अभी धारण करना पड़ेगा, देवता भी अभी बनना पड़ेगा, फरिश्ता तो अभी बनना ही है, ब्राह्मण से फरिश्ता तो बनना ही है, और देवता भी अभी बनना पड़ेगा। तो उसका कब अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे? तो उसका प्रोसेस यही है कि एक एक बात को सच्चे दिल से महसूस करो, रियलाइज करो। अमृत वेले उठे, उठते ही मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, परमात्मा से कंबाइंड हूं, परमात्मा पावर हाउस है उससे कंबाइंड हूं। रियल में उसको ऐसे महसूस करके और अपने पूरे मन बुद्धि संस्कार तीनों को वो एनर्जी दे दो, मस्तिष्क के 100 अरब कोशिकाओं को वो एनर्जी दे दो। क्योंकि वो समय जब आप उठते हो सुबह सुबह, जब सुबह सुबह उठते हैं हम, सोते हैं ना, दिन में हमारी फ्रीक्वेंसी ब्रेन का हम ईजी करते हैं, हमने हार्ट के प्रोग्राम में लोगों के सबके ईजी किए थे, जब हमारे पास लोग आए तो उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 30-35-40 थी पर सेकंड, मतलब 30 से 40 विचार एक मिनट में आ रहे थे उनको। और जब उनको राजयोग का अनुभव कराया गया तो 7वें दिन हमने टेस्ट करके देखा तो उनके ब्रेन के थॉट्स की जो स्पीड थी वो 4 से 6 हो गई थी, 4 से 7 हो गई थी, थीटा रिदम है ना, मतलब वो शांति और प्यार की रिदम थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अभी वो रिदम को अचीव करना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। तो वो जो देही मानी स्थिति का मतलब ही क्या है, देही मानी स्थिति का मतलब ही है हमारी रिदम 8 से कम आ जाए, 4 तक आ जाए, 8 से 4 के 4 से 8 के बीच में आ जाए, और प्रैक्टिकली उसको लाना पड़ेगा। तो ये हमको आधा घंटा सुबह शाम योग करके नहीं हो सकता है, श्वासोश्वास सच्चे दिल की महसूसता रियलाइज करते जाओ। पहले ज्ञान को मैंने देखिए, मैं समझता हूं शायद मैं जब ज्ञान में आया मैंने कोर्स नहीं किया था प्रॉपरली, शायद 2 दिन कोर्स, हस्बैंड बहुत बिजी होते थे और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में था, मैं टाइम नहीं मिलता था, आए थोड़ा 15 मिनट में, बहन जी को बहन जी 15 मिनट में कोर्स करा दो, आज का चैप्टर करा दो, 15 मिनट में करा दिया। फिर 2 दिन नहीं आए, 2 दिन आए, फिर 3रे दिन फिर आए, बहन जी 15 मिनट और करा दो, है ना। फिर बहन जी वैसे 2-3 बार ऐसे किया होगा, फिर डायरेक्ट मुरली पर सुननी शुरू कर दी, तो मुरली से ही कोर्स हुआ। क्योंकि जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसमें हर पेशेंट को कोर्स कराया जाता है, लगभग 169 प्रोग्राम्स हुए, मैंने 150 बार कोर्स किया उसके बाद, है ना। और 150 बार मैंने कोर्स किया, 150 बार कोर्स में मजा आ रहा है, अलग जैसे मुरली सुनते हैं रोज अलग मजा आता है ना। तो ज्ञान की गहराई जितनी बार हम सुनते हैं, जितनी बार गहराई सुनते हैं, तो सत्य की समझ अंदर से आ जावे, आत्मा गहराई से उतर जाए, परमात्मा गहराई से उतर जाए, उसकी गहराई, आत्मा परमात्मा के 9 संबंध मुख्य है, उसकी गहराई में उतर जाओ, समझ पहले समझ लो और ड्रामा की गहराई में उतर जाओ। फिर उसकी अवेयरनेस 24 घंटा रखो, चलते फिरते उठते बैठते, सहज नहीं है। देखिए जब भी आपको पता है, जब पहले आज का तो वो रंगाई ऐसे नहीं करते हैं, कपड़े की जब रंगाई करते हैं ना, पहले ब्लीचिंग पाउडर में डालते हैं 6-7 घंटा पानी में कपड़े को ब्लीच करने के लिए, उसके बाद उसको ओवरनाइट 12 घंटा उसको रंग में डाल के रखते हैं, फिर 4 घंटा कपड़े को उबालते हैं, उसके बाद उबालने के बाद 4 घंटा सुखाते हैं, उसके बाद उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको पहनते, उसको पहनने लायक होता है। तो मैंने यही प्रिंसिपल हमको यहां भी अपनाना चाहिए, कम से कम 4 घंटा तो हम, कम से कम 4 से 8 घंटा उसको पहले ब्लीचिंग पाउडर में डाल दें, ब्लीचिंग पाउडर माना योग, पावरफुल योग में उसको ब्लीच करते जाओ है ना, या ज्ञान चिता पे उसको लगातार ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाओ, ब्लीच कर दो बिल्कुल टोटल, अज्ञान से ज्ञान का रंग लगा दो, ज्ञान ब्लीच कर दो बिल्कुल सफेद कर दो पवित्रता की धारणा के द्वारा। फिर उसके बाद उसको क्या करो, फिर 12 घंटा कम से कम उसमें डाल दो, रंग में डाल दो, माना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सेवन करते जाओ, अवेयरनेस सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मनन चिंतन मंथन सेवन चलता रहे। फिर उसके बाद रियलाइज करो, महसूस करो, एक एक बात को महसूस करो, ज्ञान पवित्रता को, ज्ञान के एक एक बिंदु को, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा कौन है, आज 3 दिन के पहले मुरली में था, परमात्मा क्या है कैसा है, اس کو کوئی برلا ہی جانتا ہے، بابا کے بچوں میں سے بھی کوئی برلا ہی جانتا ہے بابا کون ہے، کیسا ہے، بابا ویدیہ ہے، بابا دھنونتری ہے نا، بابا سپریم سرجن ہے نا، بابا سب سے بڑا ویگیانک بھی ہے، بابا سب سے بڑا ہر چیز جو بھی چیز لینا چاہو سب سے بڑا چیز وہ ٹیچر ہے، سب سے پرم ستگرو ہے، کوئی بھی سمبند لینا چاہو تو اس کی گہرائی میں جانے کی آوشکتا ہے۔ تو بابا سے مکھیا نو سمبند ماتا کا سمبند، کیونکہ ہر سمبند کی جب ہم، میں نے پہلے کہا سچی دل کی محسوستا کے بنا انوبھو نہیں ہوتا ہے، اور پھر بار بار نرنتر باپ کے جو باپ نے ایک ایک بات سکھائی ہے ہم کو، اس بات کو گیان کا ایک ایک بندو، جگہ آج کی مرلی ہم لیں تو کتنے گیان کے بندو ہیں بابا کی مرلی میں، ایک ایک لائن کو میرا تو یہ میں تو سمجھا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس ہارٹ کا پروگرام آیا تو میں بھی پہلے کیا کرتا تھا کہ بس ایسے نا ویژلائز کرتے تھے، جو سیکھا تھا نا ویژلائز کرو، اوپر سوکشم وطن میں جاؤ، ایسے کرو، تو لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا، بلاکیج کھلتی نہیں تھی، لوگ امپروو نہیں ہو رہے تھے۔ پھر میں نے دادی گلزار دادی کے دوارا، دادی پرکاشمنی نے دادی گلزار کو کہا تھا کہ گپتا جی کو جب بھی کچھ بات پوچھنی ہے تو آپ کے پاس آئے گا، آپ بابا سے میسج لا کے دینا۔ تو میں نے کہا دادی جی لوگوں کو تو پریورتن نہیں ہو رہا ہے، تو بابا نے کہا بچے ان کا ویوہار بدلنا چاہیے، اس کو بیماری غلط ویوہار سے آئی ہے، ان کے ویوہار میں شانتی پیار خوشی کی انوبھو ہونی چاہیے، ان کو اس کو ایک ایک چیز کو محسوس کرنا چاہیے، اور آپ کو محسوس کرانا چاہیے، ان کو محسوس کر کے جب انوبھو ہوگا، انوبھو کی اتھارٹی بنیں گے تو ان کے بلاکیج کھلیں گے، ان کے اندر پریورتن آنا چاہیے، ان کا ویوہار پریورتن ہونا چاہیے، ویوہار پریورتن ہوگا تو آہار پریورتن ہوگا، زبردستی آپ ان کو ڈائٹ چارٹ دے دو گے فالو کرو وہ اس سے پریورتن نہیں ہوا، دل سے وہ کھائیں بھی تو صحیح نا، روکے تو نہ کھائیں نا۔ تو بابا کا میسج ایسا آیا کہ دل سے کھائیں، جو بھوجن ان کو بنا گھی والا بھوجن، بنا سوکھا بھی بھوجن دے رہے ہو دل سے کھائیں نا، اس کو سچی دل سے کھائیں بھوجن کو، خوشی اور خوشی کھائیں تو ان کی بیماری بدلے گی۔ سیر بھی کریں تو دل سے بابا کی یاد میں کریں، میڈیٹیٹیو واک کریں، باتیں کرتے ہوئے واک نہ کریں، بابا کی یاد کے علاوہ کوئی اور طرح سے بات نہ کریں، ان کے جیون میں صبح سے رات تک وہ ویوہار پریورتن کرنا پڑے گا، تب ان کو ایون سپنے میں بھی وہی ویوہار ان کا آنا چاہیے، تب ان کی بلاکیج نکلیں گے۔ تو پھر اس پہ بہت اٹینشن لیا گیا، اس لیے گھنٹے گھنٹے یاد کا چارٹ بنایا گیا، سونے کے پہلے وینٹیلیشن کا چارٹ بنایا گیا، لیٹر لکھنے کا بابا کو، لیٹر کو ڈیلی صبح سے لے کے رات تک، من کی آپ کے من میں کیسے کیسے وچار آئے صبح سے لے کے رات تک چیک کرو، کوئی من میں کی ٹینشن چیک کرو، شریر میں بیماری کی کوئی ٹینشن ہے لکھو بابا کو، بابا میرے کو ڈر لگتا ہے، میرے ہارٹ میری آرٹریز بلاک ہے، میری شوگر اوپر نیچے ہو رہی ہے، بابا میرے گھٹنے خراب ہو گئے، بابا میری کمر میں پرابلم ہے، جو بھی چھوٹی بات لکھو بابا کو، پریوار میں ٹینشن لکھو بابا کو، دھندا اوپر نیچے ہو رہا اس کی ٹینشن لکھو بابا کو، چار لیول پہ اپنی ساری ٹینشن بابا کو لکھو، پھر گھنٹے گھنٹے یاد کا چارٹ بھرو، پھر پوری مرلی پڑھو، پھر یاد کر کے سو۔ تو اس طرح سے پورا مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انوبھو کی اتھارٹی بنے بغیر، یہ انوبھو کی میں پریکٹیکلی باتیں بتا رہا ہوں کہ پوری، اور ایک ایک سمبند کی انوبھوتی کراؤ، ماں کا سمبند سے کیا ملتا ہے، کیونکہ ہر سمبند کی، باپ سے ایک ایک سمبند کی انوبھوتی الگ ہے، پراپتی الگ ہے، ترپتی الگ ہے، اور جب تک ترپتی نہیں ہوتی ہے، پراپتی اور ترپتی نہیں ہوتی ہے، تب تک ہمارے اندر شکتی نہیں آتی ہے، اور بنا شکتی کے، دو شکتی ہم کو چاہیے اگر ہم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، وہ دو شکتی کون سی ہیں، ایک ہے بریک مارنے کی شکتی، بریک لگانے کی شکتی، اور دوسرا موڑنے کی شکتی، کیونکہ ہمارے جو برین میں جو سیلز میں جو بھرا ہے نا، جو انفارمیشن بھری ہوئی، ڈاٹا بھرا ہوا ہے، وہ ہم کو غلط طرف لے کے جاتا ہے، باہر جتنی بھی سچویشن ہیں، جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں، وہ سب کے سب ہم کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں، تو جیسے ہی ہم غلط طرف جائیں بریک لگا دیں یا پھر موڑ دیں گاڑی، سنکلپ ادھر جا رہے ہیں ادھر ایک دم موڑ دیں، تو ایسا ہمیں دو شکتی چاہیے، پر شکتی جب تک ہم سچے دل کی محسوستا کے دوارا، گیان کے ایک بندو کا، پوترتا کا، شانتی کا، شانتی کیا ہے، جیسے کل کی مرلی تھا، شانتی ہمارا سودھرم ہے، سودھرم کیسے ہے، آتما 84 جنم لیتی ہے، ابھی تک ہم 83 جنم لے چکے ہیں، شانتی کا مطلب کیا ہے، शांति का मतलब है बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता। अगर आत्मा के पास पिछले जन्म का डाटा निकल आए 82वें जन्म का, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ? पिछला जन्म मुझे सारा का सारा याद आ जाए तो क्या होगा? पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इवन मेरी कल की बात भी मुझे अभी याद आ जाए, बाबा को याद करने बैठा हूं, तो क्या होगा? याद लगेगी क्या? सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ वो याद आ जाए तो मैं क्या होगा? क्योंकि बाबा शांति का सागर क्यों है? कि बाबा हमेशा वर्तमान में रहता है। बाबा ना पास्ट की सोचता है, ना भविष्य की सोचता है, ना वर्तमान की सोचता है। ड्रामा अनुसार जो होना होता है उसको टच होता है, बस वो बोल देता है। और हम सारा दिन सोचते रहते हैं। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, भविष्य से आते हैं। और शांति मतलब वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट। तो ये मुझे आत्मा का धर्म है, ये मुझे आत्मा की प्रॉपर्टी है, वर्तमान में रहना। और वर्तमान में सत्य का मनन चिंतन करना, योग माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना। मैं आत्मा हूं, उस परम सत्य परमात्मा के पावर हाउस की संतान हूं, और उससे एक संबंध को अनुभव करना। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में अभी तक जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, उसे साक्षी दृष्टा हो जाना। अभी जो हो रहा है, मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे हर संबंध से प्यार दे रहा है और पालना दे रहा है, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। क्या अच्छा होने वाला है? मैं भी ब्राह्मण हूं, फरिश्ता बत सो देवता सो बिजरो स्थिति बनाकर के बाप के साथ वापिस घर जाने वाला हूं, वाया सूक्ष्म वतन, और वापिस नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुखधाम में आने वाला हूं। तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक, ये जैसे ना अंदर से मनन चिंतन सारा दिन चलना चाहिए, और इसको महसूस करना चाहिए। महसूस करते करते पवित्रता को महसूस करो। ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान माना अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्ता स्वरूप, सत्य स्वरूप इमर्ज हो जाना। ज्ञान स्वरूप स्थिति का मतलब क्या है? अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज कर लो। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा इमर्ज हो जाए, हमारा आदि देवता स्वरूप इमर्ज हो जाए। ये है ज्ञान स्वरूप स्थिति, कि मुझे निरंतर अपने परम धाम का स्वरूप याद आता रहे और स्मृति इमर्ज हो जाए, इमर्ज रूप में मेरे अंदर रहे, और अपना सत्युग का स्वरूप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, अर्थ सहित इमर्ज रहे मेरी बुद्धि में। सामने नहीं, मेरी बुद्धि में इमर्ज रहे, मेरे अंदर इमर्ज रहे, एक एक गुण मेरे अंदर इमर्ज रहे। 16 कला संपूर्ण स्टेज माना 100%, हर गुण में 100% स्टेज मेरे अंदर इमर्ज रहे। जब गुण, कोई गुण भी 100% हो जाता है तो कला के माफिक हो जाता है। 16 कलाएं नहीं होती हैं, हर गुण 36 के 36 गुण 100% हो जाए, संपूर्ण निर्विकारी, देहभान का अंश भी ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक एक कर्मेंद्री मेरी कमल पुष्प के न्यारी न्यारी प्यारी बन जाए, और अहिंसा परमो धर्म, ना काम का अंश रहे, लाइट का ताज मुझे महसूस होता रहे, और क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी उसका अंश भी ना रहे, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मुझे महसूस होता रहे। तो मुझे ये अगर स्थिति महसूस हो रही है तो मैं अभी ज्ञान स्वरूप स्थिति है। पवित्र स्वरूप स्थिति क्या है? कि मैं, मुझे अपनी अनादि और आदि देवता स्वरूप स्थिति अनुभव हो रही है, किंतु आपकी भी अगर अनुभव होने शुरू हो गई, आपकी भी अनुभव होने शुरू हो गई, मुझे अपने घर में मेरे पिताजी की, माताजी की, भाई की, बहन की स्थिति भी ऐसी महसूस होने शुरू हो गई, अपने बॉस की भी, अपने नीचे काम करने वाली चपरासी और बाई की भी स्थिति मुझे ऐसी महसूस होती शुरू हो गई, उसका अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप महसूस हो रहा है और आदि देवता स्वरूप महसूस हो रहा है, तो अभी पवित्र, ये पवित्र स्वरूप स्थिति है। मतलब अपना सत्य स्वरूप अनुभव होते रहना और दूसरे का सत्य स्वरूप भी अनुभव होते रहना, ये मेरी पवित्र स्वरूप स्थिति है। तो ये महसूस, सच्चे दिल से महसूस जितना करते जाए, बार बार करेंगे, सबको, मैंने इसको भी किया, बहन जी को भी किया, वो भाई को भी किया, अब माता जी को भी किया, अपने दोस्त को भी किया, अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले सिक्योरिटी वाले आदमी को भी किया, पेशेंट को भी किया, अब बार बार करते करते मेरे अनुभव की अथॉरिटी बनता जा रहा हूं, अनुभव की अथॉरिटी बनता जा रहा हूं। किस चीज की? पवित्रता की शक्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनता जा रहा हूं। तो ऐसे बार बार सबके साथ मैंने किया, पवित्रता की शक्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनता जा रहा हूं। तो इस तरह बार बार जब इस तरह से, फिर शांति की, शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, इसने जो भी किया और भाई ने जो कुछ किया, दादियों में हमने देखा कुछ बात हो भी गई, किसी भी भाई से बहन से मिल रहे कि तू वर्तमान में है, पीछे इसने क्या किया कोई मतलब नहीं है। बाबा के साथ एवेक्स बाप दादा को देखा, इसने क्या किया, इस भाई या बहन ने क्या किया, बाबा को इससे मतलब नहीं है, वर्तमान में दृष्टि दे रहे हैं, बहुत बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं, उसके पास से मतलब नहीं, उसके भविष्य से मतलब नहीं, वर्तमान में टिके हुए। देखा ना बाप दादा को, देखा है ना हमने सबने, आपने देखा बाप दादा को? नहीं देखा। बाबा दादियों से मिले है ना सभी, तो दादियां कैसे कैसे हमको प्यार करती थी, वर्तमान में शांति माना वर्तमान में, इसके अनुभव की अथॉरिटी, वर्तमान में टिकने के अनुभव की अथॉरिटी। किसी के पास को नहीं देखना है, किसी के भविष्य को नहीं देखना, वर्तमान को देखना, यह है शांति। क्योंकि 90% थॉट्स कट गए ना, क्योंकि पास्ट से और भविष्य से 90% आ रहे थे, 10% ही बचा ना, एबीसी बचा ना खाली, आत्मा बाबा और संबंध बस, और कुछ बचा ही नहीं। और फिर प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्यार, वो क्या है? सत्य एवं निस्वार्थ प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। कोई व्यक्ति कैसा भी है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेना, चाहे आतंकवादी भी है, चोर डाकू भी है, मुझे गाली देने वाला भी है, रोज मुझे मेरी इंसल्ट करने वाला भी है, उसको आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, है ना। परमात्मा का प्यार की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ, चाहे कैसा भी रोल हो, दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उसकी पूरी दिल से सत्य के साथ पालना करना, इसको बोलते सत्य एवं निस्वार्थ प्यार। हमारे हार्ट की आर्टरीज इसलिए ब्लॉक होती हैं क्योंकि हम जजमेंटल बन जाते हैं। अगर हम ऐसा प्यार, ऐसा बेशुमार प्यार, विश्व में हर आत्मा के प्रति प्यार, ऐसे प्यार की हम अथॉरिटी, उसको महसूस करो दिल से, सबके साथ, गाली देने वाले के साथ भी, इंसल्ट करने के साथ भी, महिमा करने वाले के साथ भी, जब ऐसा प्यार हम स्वीकार करें, महसूस करेंगे, तो हम सत्य और निस्वार्थ प्रेम के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। ऐसा प्यार हमारी हार्ट की ब्लॉकेज खोल देगा। जब ऐसे प्यार के हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो क्या होगा, हमें चार एनओसी मिल गए, हम ज्ञान स्वरूप बन गए, तो स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल गया, पवित्रता की पवित्रता हमने अडॉप्ट कर ली, दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना अनुभव कर लिया, शुरू कर दिया, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया, क्या क्यों कैसे खत्म हो गया, निराकारी माना हम ब्रह्मचारी माना हम बाबा के साथ शिव बाबा से कंबाइंड रहने लगे और ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने लगे, ब्रह्मचारी बन गए, तो शिव बाबा हमसे संतुष्ट हो गया, मेरा बाप हमसे संतुष्ट हो गया, शांति, हमने पास का चिंतन बंद कर दिया, भविष्य की चिंता बंद कर दी और वर्तमान में रहने लगे, तो ड्रामा हमसे संतुष्ट हो गया, सबको स्वीकार कर लिया तो हमारा परिवार हमसे संतुष्ट हो गया। जब चार एनर्जी मिल गए, अब हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो गई, मन बुद्धि शुद्ध हुई, अब ये मन बुद्धि से हम सूक्ष्म वतन माना क्या, ये सूक्ष्म शरीर माना क्या, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, और उसमें भी पवित्र मन, दिव्य बुद्धि तो बाबा हमको गिफ्ट में देता है, ब्राह्मण जीवन की गिफ्ट ही दिव्य बुद्धि है, वो तो बाबा ने हमको दी, दिव्य बुद्धि माने जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, उस बुद्धि को यूज करके मैंने मन के हर विचार में डाल दी, हर भावना में डाल दी, हर मेरी वृत्ति उसके अनुसार मैंने बना दी, हर स्मृति उसके अनुसार बना दी, अपने बिलीफ सिस्टम उसके अनुसार बना दिए, तो मेरी क्या बन गई, मेरी टीम, मेरा मन क्या हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, साथ चैतन्य ये आत्मिक ऊर्जाओं से भर गया, ज्ञान से, पवित्रता, शांति और प्रेम से भर गया, तो ये सूक्ष्म शरीर है बेसिकली, मन, पॉजिटिव मन ही सूक्ष्म शरीर है, जिस मन में ज्ञान भरा हुआ, मन मना भव, जिस ज्ञान के हर विचार में मन ज्ञान भरा हुआ है, पवित्रता भरी हुई है, शांति भरी हुई है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम भरा हुआ है, तो ये मन रूपी सूक्ष्म शरीर, मतलब मेरे को क्या जाना है, जाना मेरा बुद्धि से मुझे सूक्ष्म वतन जाना है, किंतु मन अगर स्थिर नहीं होगा तो मन जाने नहीं देगा, तो मन को स्थिर करके बुद्धि रूपी लेंस क्लीन कर लिया, उसमें बाबा को बिठा लिया, हर संबंध की अनुभूति बाबा से कर ली, बुद्धि रूपी लेंस क्लीन हो गया और मन रूपी हाथ स्थिर हो गया, तो अब मैं सूक्ष्म वतन माना शिव बाबा का दिल तख्त, शिव बाबा का दिल तख्त, ब्रह्मा बाबा वो पहला बच्चा था जिसने शिव बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार सपूत बच्चा बन करके अपनी बुद्धि, मन, संस्कार को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाया, कर्मातीत बनाया, तिरसठ जन्म के विकर्मों को भसम करके और वो बुद्धिमन संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म मतलब माना शिव बाबा के दिल तक पे जाके बैठ गया। और ब्रह्मा बाबा का दिल तक एकदम दिल सच्ची और साफ थी, शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया तो क्या बन गया? बाप दादा। अब मुझे अगर सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, बाप दादा की गोद का अनुभव करना है, तो मुझे ब्रह्मा को फॉलो करना पड़ेगा। हर संकल्प बोल कर्म में श्वासों श्वास ब्रह्मा बाबा को फॉलो, शिव बाबा से कंबाइंड होकर के ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को फॉलो मैं तभी कर सकता हूं जब निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड हो। अगर मैं शिव बाबा से कंबाइंड नहीं हूं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकता, है ना। बिना शिव बाबा से कंबाइंड रहे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की ताकत चाहिए ना, वो बिना शिव बाबा से कंबाइंड रहे नहीं हो सकती है। तब मैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता हूं क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो नंबर वन है जिसने अपने सामने बिना किसी एग्जाम्पल के वो नंबर वन बन गया, बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया, बाबा के दिल में जाके। कहते ना शिव बाबा के दिल में कौन? बच्चे। और बच्चे के दिल में कौन? शिव बाबा, है ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा वो पहला बच्चा था जो शिव बाबा, उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया और शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो वो है सूक्ष्म वतन। तो हमको भी, क्योंकि जैसे माँ होती है ना, माँ के दिल में बच्चे का, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो भी वो सीन भी होता है, जब वो छोटा सा था पैरों से चलता था तो भी महसूस होता था, जब वो चलने लगा वो मुकुट लगा के पैरों में पाजेब पहन के घूमता है ना, बच्चे को बनाते ना वो क्या बनाते हैं, वो घुंघरू पहना देते बच्चे को, बच्चा चलता है घुंघरू बजते है ना, और यहाँ पे मुकुट लगा देते वो मोर पंख लगा देते, हर माँ अपने बच्चे को छोटे पे लगा देती है ना, तो कृष्ण जैसा रूप होता है ना। तो माँ शिव बाबा के दिल में हमारा पिछले जन्म का, पिछले कल्प का ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप भी है, फरिश्ता स्वरूप भी है, और इस जन्म का देवता, इस कल्प का देवता स्वरूप भी है। तो बाबा के पास तीनों स्वरूप है, तो बाबा हमको अपने तीनों स्वरूप दिखाता है। जब बाबा के पास जाता है ना सूक्ष्म वतन में, जब सूक्ष्म वतन में जब बाबा के पास हम पहुंचते हैं तो जब बाबा के साथ जाके मिलते हैं ना, ऐसा फील होता है कि बाबा से हमने पाना था सो पा लिया। ये जो फीलिंग है, ये है पाना था सो पाले की जो फीलिंग है, अतिंद्र सुख की फीलिंग है। इसमें संपूर्ण संतोष, सर्व प्राप्ति का अनुभव होता है और संपूर्ण मतलब हमें अतिंद्र सुख की अनुभूति होती है, संतुष्टता की अनुभूति होती है। और ये जो अनुभूति है इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति की अनुभूति कराती है। और इससे जब इच्छा मात्र स्थिति आती है तो हम बाबा के प्यार में लवलीन होते हैं, आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। तो ये स्थिति जो है, ये जो अतिंद्र सुख और आनंद की स्थिति का अनुभव की अथॉरिटी बनना है। किंतु वही बच्चा बन सकता है जो सपूत है, आज्ञाकारी, वफादार है, ईमानदार है, फरमान बरदार है, अर्थ सहित उसकी महसूसता आनी चाहिए। और जब हम बाबा के साथ उस आनंद की स्थिति में रहते हैं तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति जागृत हो जाती है, एक सेकंड में निर्णय कर सकते हैं, विस्तार को सार में लाने की शक्ति जागृत है, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के मन बुद्धि को शुद्ध बना के और सूक्ष्म शरीर के साथ शिव बाबा की, बाप दादा की गोद, सारूपी गोद में हम टिक जाते हैं और उसे मार उरियान बाबा से करते हैं। और फिर वहां से भी मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। और जब बाबा से करंट आने लगती है, सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आती है, सामना करने की शक्ति आती है, सहयोग करने की शक्ति आती है। तो ऐसे एक एक गुण का, एक एक शक्ति का अनुभव की अथॉरिटी जो बन जाएंगे, बाबा से एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, है ना। हमारे पास जो 69 से लेके 2017 तक की मुरलियां चली हैं, उसके एक एक मुरली के हम, उसका हम ध्यान से अध्ययन करेंगे, एक एक लाइन का अनुभव करेंगे, तो हमारा जितना कोर्स है साकार मुरलियां जो हम सुनते हैं, चलो ज्यादा नहीं करो, साकार डेली, साकार मुरली डेली की, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, एक हफ्ते के अव्यक्त मुरली, पूरे हफ्ते के लिए उसका मनन चिंतन करते रहे और डेली की साकार मुरली का मनन चिंतन करते रहे, तो भी हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत बहुत हमें अटेंशन करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारे अंदर किसी बात का, हम सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवास, तब हमें एकांतवासी स्थिति का अनुभव तब एक के अंत में खोए रहा करेंगे, तब एकाग्रता आएगी, तब इकोनॉमी आएगी, तब वैसे इकोनॉमी आएगी, तब एकमत बनेंगे, तब एकता आएगी, तब एक स्थिति होगी। और जब एक स्थिति होगी तो हमारे दैवी गुण आने शुरू हो जाएंगे, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, तो देवता के संस्कार हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम करते करते दैवी गुणों के हम अथॉरिटी बनते जाएंगे और इस तरह से हम धीरे धीरे इस जन्म में रहते रहते संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, सो फरिश्ता स्वरूप, सो देवता स्वरूप, और फिर जब देवता स्वरूप बन जाएंगे फिर हम ऑटोमेटिकली बीज स्वरूप स्थिति की हमारी स्थिति बन जाएगी, तब बाप के साथ वापस हम घर जाएंगे साथी बन करके, और फिर वापस सतयुग में बाबा के साथ वापस आएंगे। ओम।